यह आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए डिजिटल अरेस्ट और संबंधित साइबर अपराधों की रोकथाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में निदेशक निशांत कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
निशांत जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आजकल जो साइबर क्राइम की हम बात सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर साइबर क्राइम का जिक्र होता रहता है। इसमें अभी जो गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम को लेकर के नए तरीकों को लेकर के अलर्ट जारी किया है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
जैसा आप जानते हैं, पिछले एक दशक में खासतौर पर हमारे देश का जो डिजिटलीकरण है वो बहुत ही तेज गति से हुआ है और इसमें सबके हाथों में एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन पहुंच चुका है कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा, जिसकी वजह से क्या हुआ है, अब इस तकनीक का उपयोग तो किया जा रहा है, बहुत हद तक बहुत क्षेत्रों में इनका उपयोग है, लेकिन इसी के साथ क्या हुआ है, जो कुछ साइबर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने इस तकनीक की जो सुविधाएं हैं उनका ही फायदा उठाकर और उसके बाद लोगों को एक तरह से समझिए कि बेवकूफ बनाना शुरू किया है, यानी कि लोगों को एक प्रकार से बातचीत से बहलाकर, डर, लालच या ऐसे किसी तरह का प्रलोभन देकर के और ऐसे तरीके अपना करके लोगों से इसी तकनीक के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जिससे या तो लोग अपने बहुत बड़ी मात्रा में अपने पैसे खो देते हैं या फिर उनका रेपुटेशन या ब्लैकमेलिंग इनके शिकार हो जाते हैं। तो जो ICT जो कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका दुरुपयोग करके जो क्राइम किए जाते हैं उनको हम साइबर क्राइम की श्रेणी में रखते हैं आमतौर पर, क्योंकि देखिए तरीके बहुत से हो सकते हैं, हर दिन एक नया तरीका लेकर आते हैं, लेकिन अगर आप इनके मूल में देखें, जड़ में, तो आप देखेंगे लालच। जैसे कोई कहता है क्लिक करें और पैसे कमाएं, या फिर कोई कहता है घर बैठे पैसे कमाएं, या कोई कहता है इन्वेस्टमेंट स्कैम, यानी कि आप पैसे लगाएं और तुरंत आपका पैसा चार गुना हो जाएगा। ये दिखाया जाता है कि आप शेयर मार्केट में यदि इस ऐप के माध्यम से पैसे लगाएंगे तो बहुत तेजी से पैसे बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत कम एफर्ट में, बहुत कम प्रयास में और बहुत जल्दी पैसे कमाने की जो प्रवृत्ति है उसका एक तरह से फायदा उठाते हैं ये लोग। दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको, जो इनका तरीका होता है वो है डर। जैसे आपको एक बहुत आमतौर पर आता है कि आज शाम तक आपकी बिजली चली जाएगी। अब एक जो नया, जो जिसके लिए हमने अभी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि क्या किया जा रहा है कि नकली पुलिस अधिकारी बनकर, नकली कस्टम अधिकारी या फिर आप कहेंगे CBI, IB या ट्राई के अधिकारी बनकर ये लोगों को फोन करते हैं और उनको ये डराते हैं कि आपके पास जो है कोई अवैध आपका पार्सल रिसीव हुआ है, जिसको फिडेक्स स्कैम भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिडेक्स जो पार्सल है उनका इसमें नाम लिया गया। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे आपका पार्सल रिसीव हुआ है और इसमें कई प्रकार के अवैध सामान पाए गए हैं और इसका डर दिखाकर लोगों को कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बदले में लोगों से पैसे की वसूली की जाती है। और एक अभी नया प्रचलन और आया है इसी के अंदर, जिसमें कि नकली जो अधिकारी बने हुए हैं ये क्या करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि आपका कोई निकटवर्ती संबंधी जो है, जैसे आपका कोई बेटा है, आपका कोई भाई है या पिताजी आपके, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है किसी ऐसे अपराध में, जैसे कि किसी को बताया जाता है कि आपका बच्चा जो बेंगलोर में पढ़ रहा है उसे एक रेप केस में गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि बच्चा दूर है तो माता पिता घबरा जाते हैं और उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। और यहां तक कि जो अभी तकनीक बढ़ रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहां पे डीप फेक तकनीक का प्रयोग करके कई बार ये आपके परिवार जनों से मिलते जुलते आवाज भी आपको सुना देते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि सच में मेरा कोई परिवारजन जो है इनके गिरफ्त में है, और उसके बाद ये आपसे पैसे की मांग करते हैं, जिसमें लोग पैसे दे देते हैं आमतौर पे। और कई बार ये भी कहा जाता है कि जैसे आप इलीगल पार्सल पकड़ा गया है तो आप हमें अपने सारे अकाउंट के पैसे को एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जहां पर कि RBI इसकी जांच करेगा। और इस प्रकार से क्या होता है, RBI का भी नाम इसमें लपेटा जाता है और ये कहा जाता है जांच के बाद अगर सही पाया गया तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, और इस रूप में लोगों से एक मोटा पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया जाता है। हमारे पास एक पोर्टल है जहां पे हमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में रिपोर्ट दर्ज करते हैं लोग। पोर्टल का नाम अगर लोगों को पता हो तो मैं बताना चाहूंगा, www.cybercrime.gov.in। तो यदि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध हुआ हो तो आकर FIR कराने या नजदीकी साइबर थाने में जाने के बजाय सबसे पहले वो लॉगिन करके यहीं पर अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और ऐसे तो एक हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, मुख्य रूप से जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, जैसे अचानक से आपके अकाउंट से पैसे जाने लगे, उस परिस्थिति में क्या होता है कि आप पोर्टल पे बैठकर, लोगों को कई बार समय लगता है कि मुझे समय लग जाएगा, तो आप तुरंत 1930, जो हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी स्टेट में आप बैठे हो 1930 पे कॉल करके तत्काल आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर बहुत अल्प समय के अंदर आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है तो बहुत हद तक संभव है कि आपके पैसे जो हैं वो बचा लिए जाएं, मतलब उन अपराधियों के या फ्रॉडस्टर्स के हाथों में जाने से रोक लिए जाएं। इसी के तहत एक नया टर्म आया है जिसको हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। इस डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपको ये बताया गया कि आपके नाम का पार्सल आया है जिसमें अवैध सामान है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस केस में क्या है, जो व्यक्ति होता है वो कई बार बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि आप कहीं भाग न जाएं, मतलब कुछ और न करें, तो इसके लिए आपको अपना कैमरा ऑन करके शांत तौर पर, इसमें स्काइप जो एक बातचीत करने के लिए ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, ये तो स्काइप के माध्यम से भी कई बार क्या होता है, लोगों को कहा जाता है ऑन करके अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहें, अपने मोबाइल के सामने बैठे रहें और हम आप पर निगरानी रखेंगे। इस केस में क्या होता है, लोग अपने घर में रहकर ही एक तरह से डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना डरा दिया जाता है। और उस केस में इनका लक्ष्य ये भी होता है, ये देखना कि ये व्यक्ति कहीं और कॉल न करे, कहीं और मतलब सही जानकारी न मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट, इसी को जो कहते हैं कि अपने सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सामने आपको बिठा करके आप पर कॉन्टिन्यूअस नजर रखी जाती है। तो ये जो तरीका है इनका अपराध करने का, इसको कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। मैं चाहूंगा कि आपके आकाशवाणी के माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुंचे कि ऐसा कोई भी यदि उनको कॉल आता है तो बिल्कुल ना घबराएं, सबसे पहले वो तथ्यों की जांच करें और तुरंत कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत आप उस नंबर को ब्लॉक करें। और हमारा जो वेबसाइट मैंने बताया www.cybercrime.gov.in, उसी में आप जाएंगे तो हेडर पे एक सस्पेक्ट रिपोर्ट ऑप्शन आता है, वहां पर जाकर के आप उस नंबर को, या व्हाट्सएप नंबर है या नॉर्मल नंबर है या फिर आपका कोई वेबसाइट है, वो कुछ भी हो, आप वहां पे सबके ऑप्शन बने हुए हैं, आप जाकर उसमें सबमिट करके और छोड़ दें, वो हमारे संज्ञान में आ जाता है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसकी जांच करके देखा जाता है कि एक ही नंबर के मल्टीपल कंप्लेन्स आ गए हैं, तो फिर उस नंबर के ऊपर कार्रवाई की जाती है।
तो आपने जो डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया है, जैसा कि आपने बताया कि उनको मतलब एक कैमरे के सामने बैठा दिया जाता है पूरी तरह से डरा धमका करके, तो किन परिस्थितियों में ऐसा मतलब किया जा सकता है, जो आपके सामने केसेस आए होंगे, थोड़ा सा अगर एग्जांपल देकर के समझाएंगे तो हमारे श्रोताओं को समझने में आसानी होगी।
जो पार्सल वाले स्कैम्स की बात की जाती है, जहां ये बताया जाता है कि आपकी ही संलिप्तता पाई गई है किसी अपराध में, तो व्यक्ति चूंकि अपराधी नहीं है और उसको बताया जाता है कि हमें आपका उसमें आधार नंबर आपका ही है या फोन नंबर उसमें आपका ही है, आपके ही नाम से पार्सल है जिसमें हमें ये जो अवैध वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद उनको वो नकली पुलिस या जो इन्फोर्समेंट कस्टम अधिकारी हो, सीबीआई अधिकारी जो भी बनकर वो फोन करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आमतौर पर ये कॉल व्हाट्सएप नंबर से भी आते हैं, जिसमें कि आपको डिस्प्ले में कोई पुलिस अधिकारी बैठा हुआ दिखेगा, वो पुलिस अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी का भी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ फोटो हो सकता है, कोई नकली भी हो सकता है। इसके अलावा ये लोग एक नकली पुलिस थाने का माहौल बना करके आपको वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल आपको किया दिखाया जाएगा, उसमें आपको दिखेगा कि वाकई में एक थाना है जिसमें कोई सीनियर पुलिस अधिकारी या कस्टम अधिकारी बैठा हुआ है, और फिर वो आपको डराएगा कि अब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता तो वो डर जाता है, फिर उसको कहा जाता है ठीक है फिर आप अपने घर में ही रहें लेकिन हमारी नजरों के सामने रहें, और उसके बाद उसको तब तक डराया जाता है, बिठाए रखा जाता है जब तक कि वो अपनी एक कमाई का मोटा हिस्सा जो है इनके अकाउंट में ट्रांसफर न कर दे। और ऐसा देखा गया है कि थोड़े थोड़े मतलब अमाउंट करके लाखों की संख्या में धनराशि जो है
मतलब कई बार लिया जाता है पैसा। निशांत जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा इसमें आपसे, क्या जो विदेशी नंबर होते हैं उनसे भी फोन किए जा सकते हैं लोगों के पास इन मामलों में?
बिल्कुल, देश के अंदर के नंबर से भी कॉल आते हैं, बट जो व्हाट्सएप कॉल अमूमन आते हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों का फोटो लगा होता है, ये आपको जैसे +92 या ऐसे किसी दूसरे, तो एक बार तो ये भी लोगों को जांचना चाहिए जो सामान्य नागरिक हैं कि +91 आपको पता है हमारे देश भारत का जो अपना कोड है जो आता है, इसके अलावा अगर कोई और कोड से अगर नंबर कॉल आ रहा हो और अगर आपके जानकार का व्यक्ति न हो तो उसको अवॉइड करें आप मतलब उठाने से, और ये समझें कि वो फेक कॉल हो सकता है क्योंकि बाहर के नंबरों से कॉल आता है। पीछे ये भी प्राप्त हुआ कि कई ऐसे गैंग्स हैं, क्योंकि अब ये क्या रहा है, ये व्यक्ति एक नहीं विशेष नहीं करके ये एक सुनियोजित जो ना अपराध की श्रेणी में आ चुका है, तो कई गैंग्स ऐसे हैं जो क्रॉस बॉर्डर भी ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब भारत में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके पैसे ठगे जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, और ये सीमा पार बैठे मतलब किसी दूसरे देश में वहां पर बैठे कुछ तत्व हैं जो इस तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।
निशांत जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, क्या ये भी संभव है कि भारत में बैठ करके ही किसी अन्य देश का मतलब कोड लेकर के कॉल किया जा सके, खासतौर पर इंटरनेट के माध्यम से, जिसे हम के प्रॉक्सी कहते हैं?
आपको किसी पर्टिकुलर देश का एसटीडी कोड दिख रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि ये उसी देश से कॉल का ओरिजिन हुआ है, तभी ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक चुनौती बनती है, क्योंकि हमें फिर ट्रैक करना पड़ता है कि ये वाकई में ये कॉल ओरिजिनेट कहां से हुआ है, क्योंकि ये आप जो प्रॉक्सी की बात आप कर रहे हैं या रूट अलग अलग जगहों से करता हुआ फिर ये कॉल, क्योंकि ये इंटरनेट कॉल होते हैं अमूमन कई बार, तो आपको ये अलग अलग नंबरों से दिखेगा कॉल, बट हो सकता है किसी एक देश का नंबर दिख रहा हो मगर किसी दूसरे देश से किया गया हो, या भारत में ही बैठा व्यक्ति कॉल को रीरूट करके किसी और नंबर से दिखा रहा हो। मुख्य रूप से देखिए क्या है, ये अपराधी बहुत दूर बैठे हैं, इसलिए अगर हम सतर्क और जागरूक देखिए तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी जड़ में देखेंगे ना, तो जब आपको समझ में आएगा कि या तो लालच बैठा है, इसके अलावा डर का मैंने आपको उदाहरण दिया, और तीसरा है लापरवाही, जैसे आपको कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ गया, आपने उठा लिया, तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है, लोग सेक्सटॉर्शन के शिकार हो जाते हैं, जिसमें सामने से कोई व्यक्ति इस अवस्था में बैठा है और आप बात कर रहे हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया गया और फिर आपको दिखाया गया कि आप इस तरह से कॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे भी कई केसेस आए हैं जिनमें से कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं भी होते, बट हमें जब पता चलता है इस पर संज्ञान लिया जाता है। तो ये हमारी लापरवाही है, अगर हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, अननोन नंबर से आए वीडियो कॉल्स को स्वीकार नहीं करना चाहिए आमतौर पर, और दूसरा है कि हमें डरना नहीं है बिना किसी उसके, और लालच नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे एक रुपए दस रुपए तुरंत नहीं बन सकते, तो इस तरह के जो ध्यान में रखेंगे ना, तो बहुत हद तक संभव है कि ये हम साइबर अपराधियों का शिकार न बने।
निशांत जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल के दौर में सोशल मीडिया की जो हम बात करते हैं, तो वहां पर धोखाधड़ी करने के लिए लगातार फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर महिलाओं की फोटो लगा करके, जो मतलब गलत फोटो होती उन्हें लगा करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, उन्हें अपने चक्कर में फंसाया जाता है, फिर पैसे की डिमांड की जाती है, और ये आजकल मैट्रिमोनियल ऐप पर भी होने लगा है, तो इनमें बातों में कितनी सच्चाई अगर है तो इनसे किस तरह से बचा जा सकता है?
देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इन बातों में सच्चाई है, कई इम्पर्सनेशन कहते हैं या फेक प्रोफाइल जो कहते हैं, जिसमें कि आपको एक व्यक्ति का डिस्प्ले में फोटो लगा करके और उसकी तरह का एक प्रोफाइल बना करके दूसरे लोगों को कई बार बेवकूफ बनाया जाता है, तो इस तरह का के केसेस होते हैं। मैट्रिमोनियल में तो आपको चूंकि वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट पे कोई व्यक्ति अब किसी दूसरे की तस्वीर लगा करके अपना प्रोफाइल बना ही सकता है, तो इस तरह के भी वो होते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया वगैरह है, तो ये अगर आप किसी को जानते हैं, और तब क्योंकि अमूमन क्या होता है सोशल मीडिया में, दो तीन तरह की कमियां गलतियां हम करते हैं
जी।
एक तो क्या है, अपने विषय में जरूरत से ज्यादा जानकारी हम शेयर कर देते हैं कि हम आज कहां गए, कल हमने क्या किया या हम अभी क्या कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जितना ज्यादा हम बताते हैं, क्योंकि अपराधी कई बार इन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को, आजकल इतने सारे ऑटोमेटेड टूल आ गए हैं जिनसे कि बहुत जल्दी स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपकी पसंद नापसंद क्या है या आपका कोई सगा संबंधी कहाँ है, उसके आधार पे वो आपके लिए एक प्रकार का एक मतलब ट्रैप तैयार कर सकते हैं। तो हम सोशल मीडिया पे कम से कम जानकारियां शेयर करें, मतलब जो जरूरत है उतनी ही शेयर करें। दूसरा है अनजान लोगों को ना वो दोस्त न बनाए सोशल मीडिया पे, आमतौर पे जो होता है, इससे क्या होता है कि तभी ये फेक प्रोफाइल, अगर आप व्यक्ति को जानते हैं और उसको आपने सोशल मीडिया पे जोड़ा है तो शायद आपको पता होगा कि ये फेक प्रोफाइल है या नहीं है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो फिर आपने किसी को जोड़ लिया तो आपको धोखा हो सकता है आपके साथ। तो अगर ऐसा कोई आपको संज्ञान में आता है तो आप हमारे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी बता सकते हैं, और नहीं तो आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, हमारी उनसे अक्सर बात होती है, हमने उनको भी कई गाइडलाइंस दिए हैं कि आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं कि एक फेक प्रोफाइल है, तो उससे क्या होता है वो उसको डाउन कर सकते हैं जो प्रोफाइल्स हैं उनको। मुझे लगता है सतर्कता ही इसकी पहली जो है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कहते हैं, वो यही है कि हमें जागरूक और सतर्क रहना है, तो इससे हम इस प्रकार के अपराधों से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। मैं एक चीज यहां जोड़ना चाहूंगा, हमारे जो गृह मंत्रालय का ये आईफोसी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, हमारा एक सोशल मीडिया हैंडल भी चलता है जिसका नाम है साइबर दोस्त। ये सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे फेसबुक, ट्विटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लेटेस्ट जो इस तरह के मोडस ऑपरेंडी चल रहे हैं उनके विषय में हम लोग तुरंत सूचित करते हैं। तो मैं अपना आग्रह करूंगा जो आपके श्रोता हैं कि अगर जितने लोगों को बता सके और खुद उसको जरूर फॉलो करें, ताकि वहां जो भी लेटेस्ट अलर्ट्स हैं या इस तरह की उपयोगी जानकारियां हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। मतलब एक तो तीन चीजें ध्यान रखने की है हमारी तरफ से, एक 1930 जो कॉल का नंबर है
जी,
दूसरा है हमारा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in, और ये दोनों ही तब है जब आप किसी साइबर अपराध के शिकार हो गए हों, लेकिन जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप शिकार हो ही ना इसके लिए जागरूक रहें, इसके लिए हमारा वो जो साइबर दोस्त सोशल मीडिया हैंडल है उसको जरूर फॉलो करें आप लोग, इससे क्या होगा कि समय रहते ही जो है अलर्ट सावधानियां मिल जाएंगी।
जी निशांत जी, जानकारी देने के लिए, हमसे जोड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे डिजिटल अरेस्ट और संबंधित साइबर अपराधों की रोकथाम पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में निदेशक निशांत कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।